याफा और यमनिया वासियों से युदाह का प्रतिशोध। अध्याय 12। समझौते की इन बातों के बाद लीसियस राजा के पास लौट गया और यहूदी लोग अपनी खेती में लग गए, किंतु उस प्रांत के कई सेनापति तिमोथेव गन्नेयस का पुत्र अपोलोनियस, हिरोनिमस, डेमोफोन और साइप्रस का सेनापति निकानोर यहूदियों को शांति से रहने नहीं देते थे। याफा वासियों ने ये दुष्टता की। उन्होंने अपने साथ रहने वाले यहूदियों से कहा कि वे अपनी पत्नियों और बाल बच्चों के साथ नावों पर सवार हो जाएं, जो उन्होंने तैयार रखी थीं। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके प्रति कोई बैर नहीं था, ये नगरपालिका का प्रबंध था। इस पर यहूदियों ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे उनके साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते थे और उन्हें लगा कि इसमें धोखे की कोई बात नहीं है। जब वे खुले समुद्र में आ गए तो उन नावों को डुबा दिया गया जिन पर लगभग 200 यहूदी सवार थे। जैसे ही यूदाह को अपने जाति भाइयों के साथ की हुई क्रूरता का पता चला, उसने अपने आदमियों को बुला भेजा। उसने निष्पक्ष न्यायकर्ता ईश्वर की दुहाई दी और अपने भाइयों के हत्यारों के विरुद्ध चल पड़ा। उसने रातों रात बंदरगाह में आग लगा दी, नावें जला दी और जिन लोगों ने वहां शरण ली थी उन्हें मार दिया। नगर के फाटक बंद कर दिए गए थे, इसलिए वो इस विचार से चला गया कि वो बाद में लौटकर सारा याफा नष्ट कर देगा। जब उसने सुना कि यमनिया के लोग भी अपने साथ रहने वाले यहूदियों के साथ वैसा ही करना चाहते थे, तो उसने यमनिया के निवासियों पर रात में आक्रमण किया और उस बंदरगाह तथा वहां की नावों को जला दिया। उस आग की ज्वाला यरूशलेम तक दिखाई देती थी, जो वहां से 50 किलोमीटर दूर है। गिलाद पर आक्रमण। यहूदियों ने वहां से तिमोथेव के विरुद्ध प्रस्थान किया। वे 2 किलोमीटर भी पूरे नहीं कर सके कि उन पर अरब टूट पड़े, जिनकी संख्या कम से कम 5,000 पैदल सैनिक और 500 घुड़सवार थे। घमासान युद्ध हुआ, किंतु अंत में यूदाह के आदमी ईश्वर की कृपा से विजयी हुए। पराजित खानाबदोश लोग यूदाह से दया की याचना करने लगे। उन्होंने उसे पशु देने का वचन दिया और ये वादा किया कि वे हर प्रकार से उसकी सहायता करेंगे। यूदाह जानता था कि वे सचमुच बहुत सी बातों में उसकी सहायता कर सकते हैं, इसलिए उसने उनकी शांति की बात स्वीकार कर ली। वे उससे हाथ मिलाकर अपने तंबुओं में लौट गए। इसके बाद यूदाह ने एक ऐसे नगर पर आक्रमण किया जो बांध और 4 दीवारों से घिरा था। उसमें कई जातियों के लोग रहते थे। उसका नाम कस्पिन था। उस नगर के निवासियों को 4 दीवारी की सुदृढ़ता पर और नगर में खाद्य सामग्री के भंडारों का भरोसा था, इसलिए वे यूदाह के आदमियों पर ताना मारने, उनका अपमान करने, ईश निंदा और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने लगे। इस पर यूदाह के आदमियों ने संसार के प्रभु की दुहाई दी, जिसने योशुआ के समय भित्तिपातकों और घेरे के यंत्रों का प्रयोग किए बिना यरीखो की 4 दीवारी गिरा दी थी। वे जंगली पशुओं की तरह दीवार पर टूट पड़े। उन्होंने ईश्वर की इच्छा से नगर अपने अधिकार में कर लिया और उसमें इतने लोगों का वध किया कि नगर के पास का तालाब, जो 0.5 किलोमीटर चौड़ा था, रक्त से भरा हुआ दिखाई देता था। वे वहां से 140 किलोमीटर आगे बढ़कर यहूदियों के यहां खारकस पहुंचे जो तूबी कहलाते हैं। उन्हें वहां तिमोथेउ नहीं मिला क्योंकि वो किसी से कुछ कहे बिना वहां से चला गया था, किंतु उसने वहां के किसी स्थान पर एक बड़ी रक्षक सेना रख दी थी। दोसीथेउ और सोसीपतेर ने, जो मक्काबी के सेनापति थे, उस स्थान पर आक्रमण किया और तिमोथेउ के उस गढ़ में रखे हुए लोगों को समाप्त कर दिया। उनकी संख्या 10,000 से अधिक थी। अब मक्काबी ने अपनी सेना को दलों में विभाजित किया, उनके अध्यक्ष नियुक्त किए और तिमोथेउ की ओर प्रस्थान किया, जिसके पास 120,000 पैदल सैनिक और 2,500 घुड़सवार थे। जैसे ही यूदाह पास आया, तिमोथेउ ने स्त्रियों और बच्चों को अपने सामान के साथ कर्नियन नामक स्थान भेज दिया। वहां एक अजेय गढ़ था क्योंकि वहां तक पहुंचने की घाटियां सकरी थीं। जैसे ही यूदाह का प्रथम दल पहुंचा, शत्रुओं पर आतंक छा गया क्योंकि उन्हें सर्वद्रष्टा ईश्वर के दर्शन हुए। उनमें भाग दौड़ मच गई। वे इधर उधर इस तरह भागने लगे कि वे अपने ही आदमियों के हाथों घायल हो जाते और अपनी ही तलवारों की धार के शिकार बन जाते। यूदाह ने उन्हें बुरी तरह खदेड़ा और उन दुष्टों को, लगभग 30,000 लोगों को, मार गिराया। तिमोथेउ स्वयं ही दोसीथेउ और सोसीपतेर के आदमियों के हाथ पड़ गया। उसने कपटपूर्ण बातें करते हुए जीवनदान मांगा। उसने ये कहा कि उनमें कितनों के माता पिता और भाई बंधु उसके वश में हैं। अगर वे उसे मुक्त नहीं करेंगे तो उनके संबंधियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा। जब तिमोथेउ ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनके संबंधियों को सकुशल जाने देगा, तो उन्होंने उसे मुक्त कर दिया, जिससे उनके भाई बंधुओं की रक्षा हो सके। वहां से यूदाह कर्नियन और अतरगातिस के मंदिर की ओर बढ़ा। उसने वहां पहुंचकर 25,000 आदमियों का वध किया। इन शत्रुओं की पराजय और विनाश के बाद यूदाह ने अपनी सेना के साथ किलाबंद नगर एफ्रोन की ओर प्रस्थान किया, जहां लीसियस तथा कई जातियों के बहुत से लोग निवास करते थे। तगड़े युवकों की सेना चार दीवारी के बाहर पंक्तिबद्ध थी और उसने वीरतापूर्वक विरोध किया। नगर के अंदर युद्ध यंत्रों और अस्त्र क्षेपकों की भरमार थी। यहूदियों ने उस सर्वशक्तिमान की दुहाई दी जो अपने सामर्थ्य से शत्रुओं को रौंदता है। इसके बाद उन्होंने नगर को अपने अधिकार में किया और वहां लगभग 25,000 निवासियों का वध किया। वे वहां से स्कूता पुलिस की ओर बढ़े, जो यरूशलेम से 140 किलोमीटर दूर है। वहां के रहने वाले यहूदियों ने यह साक्ष्य दिया कि स्कूता पुलिस के निवासी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और कि उन्होंने विपत्ति के समय उनका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया था। इसलिए यूदाह और उसके साथियों ने नागरिकों को धन्यवाद दिया और उनसे अनुरोध किया कि वे भविष्य में भी यहूदियों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहें। इसके बाद वे यरूशलेम लौट गए क्योंकि अब सप्ताहों का पर्व निकट था। गोर्गियस से लड़ाई। उस पर्व के बाद, जो पेंतेकोस्त कहलाता है, वे इदुमैया के शासक गोर्गियस के विरुद्ध चल पड़े। वो 3,000 पैदल सैनिकों और 4,000 घुड़सवारों के साथ उनका सामना करने आया। वे एक दूसरे से भिड़ गए और युद्ध में थोड़े ही यहूदी खेत रहे। बकेनोर के आदमियों में दोसीथेउ नामक व्यक्ति ने, जो शूरवीर घुड़सवार था, गोर्गियस को उसके लबादे से पकड़कर जोरों से अपनी ओर खींचा, जिससे वो उस अभिशप्त को जीवित ही पकड़ ले। लेकिन एक थ्राकी घुड़सवार ने दोसिथेव पर प्रहार कर उसकी बांह काट दी। इस प्रकार गोर्गियस निकलकर मरीसा भागने में सफल हो गया। इसिद्रिस के आदमी देर तक लड़ते लड़ते थक गए। तब यूदाह ने प्रभु से प्रार्थना की कि वो अपने को यहूदियों का सहायक और सेनापति प्रमाणित करे। उसने अपनी मातृभाषा में भजन गाया और युद्ध का नारा लगाकर गोर्गियस के आदमियों को भगा दिया। मृतकों के लिए प्रार्थना। यूदाह अपनी सेना लेकर अदुल्लाम पहुंचा। सप्ताह का अंत निकट था, अतः उन्होंने प्रथा के अनुसार अपने को पवित्र कर वहीं विश्राम दिवस मनाया। दूसरे दिन यूदाह और उसके साथी वध किए गए लोगों के शव एकत्र करने और उन्हें पूर्वजों की कब्रों में अपने संबंधियों के साथ दफनाने लगे। इस कार्य में अब देर नहीं की जा सकती थी। अब पता चला कि प्रत्येक मारे हुए व्यक्ति के कपड़ों के नीचे यमनियों की देवमूर्तियों के ताबीज थे। संहिता के अनुसार यहूदी ऐसी वस्तुएं अपने पास नहीं रख सकते थे। अब सबके सामने ये स्पष्ट हो गया कि वे इसी पाप के कारण मारे गए हैं। इस पर सबों ने निष्पक्ष न्यायकर्ता का धन्यवाद किया जो गुप्त बातें प्रकाश में लाता है। इसके बाद उन्होंने प्रार्थना की और ये निवेदन किया कि उनके किए हुए अपराध पूर्णतः क्षमा कर दिए जाएं। वीर यूदाह ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने को पाप से बचाए रखें, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मारे हुए लोगों के पाप के कारण उन पर क्या बीती थी। इसके बाद यूदाह ने लगभग 2000 रुपए का चंदा एकत्र किया और उसे यरूशलेम भेज दिया, जिससे वहां पाप के प्रायश्चित के रूप में बलि चढ़ाई जाए। उसने पुनरुत्थान का ध्यान रखकर ये उत्तम तथा सराहनीय कार्य संपन्न किया। यदि उसे मृत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता। उसका उद्देश्य पवित्र तथा पुनीत था, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु भक्ति में मरने वालों के लिए एक अपूर्व पुरस्कार सुरक्षित है। इसलिए उसने प्रायश्चित के बलिदान का प्रबंध किया, जिससे मृतक अपने पाप से मुक्त हो जाएं।